ओम शांति। आज दो टॉपिक है, फीलिंग देवी की शव यात्रा और चिकने घड़े की विजय यात्रा। जब ये टॉपिक मिला तो सबसे पहले तो चिंतन चला कि हम कौन सी कैटेगरी में हैं। तो उसके भी अलग अलग स्टैटिस्टिक्स है कि कौन ये कैटेगरी में आता है, बहनें कौन से कैटेगरी में आती है, भाई कौन से कैटेगरी में आते हैं, तो उसके बारे में कुछ सुनेंगे आज। तो सबसे पहले फीलिंग देवी की शव यात्रा। तो बाबा, फीलिंग देवी किसे कहता है? जिसको छोटी छोटी बातों पर फीलिंग आ जाती है, जिसका नेचर बहुत सेंसिटिव होता है, उनको बाबा फीलिंग देवी कहता है। तो इसको टॉपिक का नाम जैसे है फीलिंग देवी की शव यात्रा। ऐसा क्या होता है, इतना दुख, इतना अति दुख या इतना अति ग्रीफ कि उसको शव यात्रा से कंपेयर किया गया, उसकी फीलिंग को। तो जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है तभी अति दुख की अवस्था होती है। अगर हमारा कोई मित्र संबंधी जिसने शरीर छोड़ा, तो हमारी अवस्था कैसी होगी? पूरी दुख की अवस्था होगी। तो ऐसे ही जो किसी की डेथ होती है, तो या तो वो सडनली होती है या तो ग्रेजुअल होती है। तो दो टाइप के रिएक्शन होंगे इसमें, एक तो सडन और एक ग्रेजुअल। तुरंत किसी की डेथ होना और कैसा महसूस होना, और आहिस्ते आहिस्ते कोई हमारे सामने, जैसे कि कोई टर्मिनल इल पेशेंट है जिसको कैंसर है, या किसी को कोई ब्रेन की बीमारी है, और आहिस्ते आहिस्ते वो हमारे सामने जा रहा है, तो कैसा रिएक्शन होगा। तो ऐसे ही अलग अलग इमोशंस इसमें आते हैं। तो सबसे पहले दुख होता है, फिर रोना होता है, रोते हैं लोग दुख में। दूसरा रिएक्शन होता है कि बहुत डर की अवस्था होती है, कोई चला जाता है अगर हमारी जिंदगी से, तो हम सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा। ये फीलिंग आती है कि अब मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं, एक मायूसी सी होती है कि अब तो कोई नहीं रहा, कोई केयर करने वाला नहीं है। तीसरा चिड़चिड़ापन होता है, चिड़चिड़ापन जैसा इरिटेबिलिटी होती है, और कभी कभार क्रोध भी आता है, किसी के जाने पर क्रोध भी आता है कि आप हमको छोड़ के चले गए। तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस होते हैं। तो दुनिया में जब ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ग्रीफ रिएक्शंस, तो दुनिया में ऐसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई हैं जहाँ पर लोग जा सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं। तो फीलिंग देवी भी अपने कहानियां दूसरों को जाके सुनाती है बार बार। तो ऐसे अलग अलग होती है उसकी यात्रा। तो जैसे कि इसको शव यात्रा से कंपेयर किया है, तो फीलिंग देवी को भी पहले फीलिंग आती है, तो दुख होता है, तो किसी के मरने पर भी दुख होता है। फिर जैसे कि उसको रोना आता है ना, तो यहाँ पर भी जैसे कि आंसू बहते हैं, और वहां पर भी जैसे शव को निहलाया जाता है। हाँ, उमंग उत्साह से डेड हो जाती है, उमंग उत्साह से डेड हो जाती है। और जैसे कि दूसरे धर्मों में, अलग अलग धर्मों में बताया गया, इस्लाम में या हिंदू धर्म में, कि कैसे जब किसी की डेथ होती है, तो सबसे पहले जैसे हिंदू में बताते, हमने अलग अलग लोगों को पूछा था कि कैसे रहता है, तो सब में अलग अलग है एक्चुअली। तो किसी ने बताया कि पहले गोबर से स्थान को क्लीन किया जाता है, फिर गंगा जल छिड़का जाता है उस पर, और फिर उस बॉडी को रखा जाता है, नहलाया जाता है, उसका श्रृंगार किया जाता है, एक दुल्हन की तरह या एक दूल्हे की तरह उसका श्रृंगार किया जाता है, और फिर वो लेके निकलते हैं। जब लेके निकलते हैं तो एक मटकी फोड़ते हैं पीछे से, और जब वो शव को उठा के लेके जाते हैं तो जैसे राम राम बोलते हैं, और उस पर कॉइन्स फेंकते हैं या गेहूँ फेंकते हैं या फूल फेंकते हैं। और जो और आगे भी एक मटका होता है उसमें दीपक, किसी किसी में वो मटका लेके चलते हैं जिसमें वो जल रहा होता है। और अलग प्रकार के लोग हैं जिसमें जलाया ये नहीं के करते, जलाते नहीं है संस्कार, और उसमें दफनाते हैं, तो उसमें लिटाते नहीं, बिठाते हैं ऐसे, है ना, समाधि देते हैं, और उसके ऊपर ऐसे कुछ रखते हैं, उसको भी श्रृंगार करते हैं, और फिर है ना वो बिठा के ही निकलती है वो यात्रा। हाँ, वैकुंठ की यात्रा। तो गोस्वामी जो रहते हैं उनमें ऐसा होता है, और उनमें तो ऐसा भी होता है कि जो 90 इयर्स के ऊपर है अगर उसकी डेथ हो गई है तो बैंड बाजे से निकलती है यात्रा, तो उसमें कोई दुख की बात नहीं होती चला गया तो। और इस्लाम धर्म में भी ऐसे ही होता है, और उसको हिलाया जाता है जिसको गुसूल कहते हैं, फिर उस डेड बॉडी को रखा जाता है, उसके बाद कोई उसको टच नहीं कर सकता, वाइट कपड़े से पूरा उसको ढक दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको फ्लावर्स से सजाया जाता है, फ्लावर्स की चादर होती है उससे सजाया जाता है, और फिर चार लोग मिलके उसको उठाते हैं, तो जब वो उसको उठाते हैं तो उसको जनाजा बोलते हैं, और फिर वही दुआ पढ़ते हुए निकलते हैं। तो ऐसे ही हर धर्म में देखा जाए तो जब किसी की डेथ होती है तो बहुत रोना होता है और बहुत दुख की अवस्था है उधर, तो फीलिंग देवी की भी ऐसे ही दुख की बहुत अवस्था है, और उसको कंपेयर किया है इस शव यात्रा से। कभी फीलिंग देवी को कौन से ऐसे सिचुएशंस होंगे जिसमें उसको फीलिंग आती है, तो सबसे पहले इच्छाएं, अगर उसने कोई इच्छाएं रखी, जैसे कि अगर उसने किसी के लिए बहुत कुछ किया और रिटर्न में उसको नहीं मिला तो उसको फीलिंग आती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बीमार है और उसने उसकी बहुत सेवा की, अपना टाइम लगा दिया, अपना योग भी छोड़ दिया और उनकी सेवा में लग गए, उनके साथ बैठ रहे हैं, उनको भोजन खिला रहे हैं, और जब जो फीलिंग देवी की बारी आई, जब वो बीमार पड़ी, तब उसको देखने वाला वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति सोचते आपका तो ऐसे ही है, आपका तो रोज का है। अगर उसको ऐसे निग्लेक्ट किया गया तब उसको फीलिंग आएगी, तब उसको रोना आएगा कि मैंने इनके लिए इतना किया और ये मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, तो इच्छाएं रखने पर होता है। दूसरा, अगर उसको किसी ने जोर से बोल दिया, अगर चार लोग दस लोग के बीच में उसको किसी ने जोर से बोला तो उसको बड़ी फीलिंग आएगी, और फीलिंग देवी बहुत सेंसिटिव इंसान है, जैसे कि अगर उसके नॉर्मल भी बात किया जाए ना थोड़ी सी टोन में, तो उसको लगेगा ये व्यक्ति मुझे चिल्ला रहा है, ये व्यक्ति मुझ पे गुस्सा कर रहा है, वो उस तरह से उस सिचुएशन को लेती है और सोचती है कि ये जो बोलना भी चिल्लाना है, तो उस तरह से वो उस सिचुएशन को लेकर जैसे कि राई का पहाड़ बनाती है, तो इस तरह से उसका रिएक्शन होता है जब कोई जोर से बोलता है तो फीलिंग आती है। तीसरा, जब कोई इंसल्ट करता है, अगर कोई उसकी इंसल्ट कर दिया सभी के बीच में खास, तो उसको लगता है कि बाद में भी तो बोल सकते थे अलग से, दस लोग के बीच में चार लोग के बीच में बोलने की क्या जरूरत थी, तो इस तरह से उसको रोना आएगा कि इन्होंने मुझे इतना कुछ बोल दिया। और जैसे कि इंसल्ट में भी अगर ले तो, जैसे कि कई कई बार हमने देखा है सीट वीट मिलनी होती ना, उसमें भी ये सोचते कि हमको पीछे सीट दी, हमारी इंसल्ट हो गई, तो उसमें उसकी अलग अलग फीलिंग्स आती है कि हम तो देखो इतना डोनेशन देते हैं, फिर कैसी थॉट प्रोसेस चालू होती है, हम तो इतना डोनेशन देते हैं, हम तो यज्ञ के लिए इतना करते हैं, फिर भी मुझे ऐसा किया, तो ये फीलिंग आएगी उसमें। फिर तीसरी सिचुएशन है मांगने की, अगर कुछ उसने मांगा और उसको नहीं मिला तो उसको फीलिंग आती है, फिर कैसे अलग अलग थॉट्स उसमें चलते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर उसके कैसे थॉट्स चलेंगे, अगर वो सोचेगी देखो हम जाते हैं तो हमको एक पैकेट टोली मिलती है और ये जाते हैं तो इनको एक थैली भर कर टोली मिलती है, तो इनका और हमारे में क्या डिफरेंस है, ये क्या है भाई पार्शियलिटी, यज्ञ में क्यों पार्शियलिटी, ये क्या पॉलिटिक्स है यहाँ पर भी, तो ये फीलिंग्स आती है उसको जब उसको कुछ नहीं मिलता है। लास्ट ईयर एक सेवाधारी भाई थे, ओपीडी में आए थे, तो यहाँ पे तंदूरी रोटी का प्रोग्राम था, तो वो शायद उसमें जाने की कोशिश किया होगा उसने, तो उसको किसी ने बोला नहीं ये आपके लिए नहीं है, ये मधुबन निवासियों के लिए, तो वो ओपीडी में आके कंप्लेंट करने लगा ऐसी कि देखो मैं, ये तो बाबा का घर है और सबके लिए समान होना चाहिए, मुझे क्यों बोला निकलने के लिए वहां से। और फिर एक बार सौगात भी कुछ हो रही थी, उसमें भी वो जा रहा था, तो उधर से भी उसको बोला कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो कैसे उसको फीलिंग आ रही थी, तो कैसे फीलिंग चलेगी जब कुछ मांगने पर या कुछ इच्छा रखने पर नहीं मिलता है, तो कैसी फीलिंग आएगी, फिर वो क्या सोचेगी फीलिंग देगी कि देखो हम हमारे लौकिक में होते तो अच्छा होता, हमारे लौकिक में माँ बाप तो हमको दे देते ना, यहाँ तो ये लोग हमको दे ही नहीं रहे कुछ भी। हमारी छोटी छोटी जो जरूरत है, जो हमारी नेसेसिटी है, वो भी पूरी नहीं हो रही। तो फीलिंग लेने को उस चीजों पर जैसे कि मिलेगी। एक बार हमने पहले भी सुनाया था, चार महिलाएं एक बार बाबा मिलन में आई थी और फॉरेनर्स जहाँ बैठते हैं ना वहां जाके बैठ गई वो। तो उनको उठाया गया कि आप उठो यहाँ से, ये आपकी सीट नहीं है। तो उनको वो चारों महिला क्या बोलने लगी कि है ना, क्या हम भगवान के बच्चे नहीं है क्या, हाँ क्या विदेशी भगवान के बच्चे, क्या हमारा हक नहीं आगे बैठने का, इनको ही आगे बिठाया जाता है। तो ऐसे ऐसे बोलने लगी, तो इस तरह की फीलिंग्स आएगी उसको। तो फिर उनको दूसरी सीट अरेंज करके दी गई, तो वो फिर थोड़ी खुश हुई। तो ऐसे ही मांगने के ऊपर कुछ नहीं मिलना। फिर फीलिंग देवी जो है वो इतनी सेंसिटिव है, चौथा पॉइंट, संगठन में आने को उसको डर लगता है। यज्ञ परिवार में मिलना जुलना उसको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो क्या सोचती है कि अगर मैंने कुछ गलत कर दिया तो फिर ये मुझे जोर से बोलेंगे, और अगर ये मुझे जोर से बोलेंगे तो मुझे हर्ट होगा, तो मुझे रोना आएगा। तो वो बचती है लोगों से मिलने के भी, संगठन में आने को भी उसको डर लगता है, संगठन में मिलने को भी उसको डर लगता है, इसीलिए वो परिवार में मिलजुल कर नहीं रह सकती। तो संगठन में दूसरी चीज है, जब वो संगठन में कुछ देखती है तब उसको फीलिंग आती है। जैसे अगर वो देखती है कि हम बहुत सेवा करते हैं और हमारे बड़े सेवा नहीं कर रहे, हमारे बड़े सेवा आराम कर रहे सिर्फ, तो उसको फीलिंग आएगी कि देखो ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे और मुझसे ही सब कुछ करवा रहे। या सेंटर पे अगर कोई छोटी बहन है और बड़ी बहन है और वो देखेगी कि अगर बड़ी बहन कुछ नहीं कर रही और सब कुछ मुझसे करवा रही है, तो उसको फीलिंग आएगी कि नहीं सब कुछ करती हूँ और बहन जी तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं। तो ऐसा होगा, तो वो अपने आप को बहुत कमजोर समझती है और एकदम हीन भावना में रहती है हमेशा। फिर एक ऐसी कैटेगरी, जैसे कि ग्रुप्स होते हैं, जैसे ये अगर संगठन है, अगर इधर कोई फीलिंग देवी है तो कैसी फीलिंग्स आएगी। तो जैसे कि सब मेहनत करके क्लास करते हैं, है ना, फिर भी किसी की क्लास को बहुत बोला जाता है कि आपने बहुत अच्छी क्लास की, या उसके लिए लिखा जाता है सुपर डुपर क्लास, सुपर क्लास, स्पेशल क्लास, क्रांतिकारी क्लास, किसी को थैंक्स किया जाता है, वीआईपी, है ना, वीवीआईपी। तो जो फीलिंग देवी होगी उसको ऐसा लगेगा कि मैं भी तो मेहनत करती हूँ, तो मुझे क्यों थैंक्स नहीं करते, मुझे क्यों नहीं करते, इनको ही आगे बढ़ाते। तो ये फीलिंग आएगी फीलिंग देवी को। और जैसे कि वो क्लास करने के बाद भी 10 लोगों को पूछेगी मेरा क्लास अच्छा था ना क्योंकि उसको अंदर से बहुत इनसिक्योरिटी फीलिंग है, उसको अपनी इमेज ही उसकी हिलती अंदर से, तो अच्छा था ना क्लास। फिर किसी ने अगर बोल दिया नहीं तुम्हारे साथ जो था उसका, उसने अच्छा बोला, उसका मैटर अच्छा था, तो फिर गया। और अगर टीचर ने बोल दिया कि सेकेंड टाइम वापस करना पड़ेगा तो एकदम ही गया। हाँ, जो चिकने खड़े होंगे वो शायद बोलेंगे हम थर्ड के लिए भी तैयार है, लेकिन फीलिंग देवी को फीलिंग आ जाएगी कि मैंने बहुत मेहनत की। और फीलिंग देवी का नेचर ऐसा है कि अंदर से वो बहुत सिंसियर और हार्डवर्किंग है, क्योंकि वो डरती है ना कि गलती करूंगी तो सामने से रेजिस्टेंस मिलेगा या सामने से कुछ गुस्सा मिलेगा, तो उसको डर लगता है, इसलिए वो बहुत हार्डवर्किंग और सिंसियर है अपने नेचर में। तो उसका ये पॉजिटिव पॉइंट भी है। दूसरा, फिर जैसे एक अलग कैटेगरी के लोग, जैसे बाबा कहते हैं कि ये छुई मुई होते हैं, टच मी नॉट होते हैं, इनको थोड़ा सा भी कुछ बोल दे और ये ऑफ हो जाते हैं, तो ऐसे टाइप के लोग रहते हैं ये। तो इनके साथ रहना भी किसी को डर लगेगा कि कैसे इनके साथ रहे, इनको तो कुछ भी बोल दो तो अपसेट हो जाते हैं या मूड ऑफ हो जाता है इनका। फिर एक डिफरेंट कैटेगरी के लोग है, क्योंकि ये सेंसिटिव नेचर है तो ये लोगों को बहुत समझते हैं और लोगों की मुश्किलें भी समझेंगे, जैसे कि इनसेंसिटिव नहीं है। दूसरा, इनको अगर किसी का कुछ बुरा हुआ ना तो सोचेंगे मेरी वजह से हुआ, ये हीन भावना होंगी उनमें। अगर किसी का नुकसान हो गया तो सोचेंगे मेरी कारण हुआ इनका नुकसान। जैसे कल एक पेशेंट था ओपीडी में, और एक महीने पहले या कुछ एक भाई ने शरीर छोड़ा, तो उसको चेस्ट पेन हो रहा था, तो उसने तीन भाइयों को फोन किया और तीनों ने भी कोई कारण से फोन नहीं उठाया। और ये जो भाई पेशेंट आया था ओपीडी में, इनका ऐसे हुआ कि इनका फोन साइलेंट पे था, इसीलिए इन्होंने नहीं उठाया। तो जो भाई को चेस्ट पेन हो रहा था वो भाई खुद ही ड्राइविंग करके गया और बीच में उसको डेथ हो गई उसकी। तो इसको क्या लग रहा है कि मेरी वजह से उसकी डेथ हुई, क्योंकि मैंने फोन नहीं उठाया ना, मैंने फोन नहीं उठाया इसीलिए उसकी डेथ हुई। तो कैसे ये हर चीज को कैसे रॉन्गली ले लेती है फीलिंग देवी, तो ये सिचुएशंस में इसको फीलिंग आएगी। फिर इसकी क्वालिटीज कैसी होगी, एकदम सेंसिटिविटी, मेंटल लेवल पर सेंसिटिविटी तो फिजिकल लेवल पर भी बहुत सेंसिटिविटी। जैसे कि अगर वेदर चेंज हो गया तो तुरंत सर्दी खांसी होना, क्योंकि वो सेंसिटिविटी फिजिकल लेवल पर भी दिखेगी। तो ऐसे उस सेंसिटिविटी हर लेवल पर है उसकी। दूसरा, बहुत सारे क्राइंग स्पेल्स, बहुत बार रोना, और हमेशा आइसोलेटेड फील करना, फैमिली में हमेशा आइसोलेटेड रहना, आइसोलेट मतलब अकेले अकेले रहना, संगठन में मिलना जुलना नहीं। और उसको क्या होता, उसको तो लगता है कि सारे लोग मेरे विरोध में हैं, जो भी लोग कर रहे हैं सब मेरे विरोध में ही कर रहे हैं। उसको बहुत सारी डाउट्स की फीलिंग होगी कि इन्होंने मेरे साथ जानबूझ के ऐसे किया, इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इनके मन में कुछ है तभी तो इन्होंने ऐसा किया। इतनी सारी डाउट्स रहेगी उसके मन में। और जैसे कि वो अपने इमोशंस को छोड़ ही नहीं पाती, उसके कंट्रोल में ही नहीं है उसके इमोशंस, तो वो छोड़ ही नहीं पाती। वो इतनी कमजोर हो चुकी है या उसको इतना आघात होता है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाती। और जैसे कि इतनी ओवर रिएक्टिंग रहेगी हर सिचुएशन में, ओवर रिएक्ट, इसीलिए उसके संबंध भी जो है ना वो बिगड़ जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज में ओवर रिएक्ट करती है। जैसे राई का पहाड़ बनाएगी, अगर कोई चीज में डिस्कशन चल रहा है तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके उस चीज को है ना आगे बढ़ती है और अपने ऊपर ही सब कुछ ले लेती है, उस तरह से रहेगा। और उसको स्लाइटेस्ट रिमार्क अगर कुछ भी बोला गया तो वो उसको ले नहीं पाती, वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाती उसको। और अंदर ही अंदर घुटना होता है इस इंसान का। अगर हमारे बीच में कोई फीलिंग देवी है और आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने इमोशंस को इतना दबा के रखती है, इतना उसमें घुटना है तो वो इतना दबा के रखेगी। और जैसे कि हम सोचते हैं कि ऐसे के साथ रहना कितना डिफिकल्ट है ना, ऐसे इंसान के साथ रहना कितना डिफिकल्ट होगा, लेकिन ये बात सोचने की है कि वो आत्मा के लिए वैसा होना कितना डिफिकल्ट है, फीलिंग देवी होना कितना डिफिकल्ट है, जब वही हम सोच रहे हम उसके साथ कैसे रहेंगे। और एक अलग पहलू है इसका कि सेंसिटिव नेचर के अपने प्लस पॉइंट्स भी हैं, कि क्योंकि ये सेंसिटिव है, ये एम्पैथेटिक है। एम्पैथेटिक यानी कि उसको दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ में आता है कि हाँ ये इसको तकलीफ है, इसको मदद करने की जरूरत है, क्योंकि वो हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही होती है, उसमें ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत डेवलप हो जाती है। और क्योंकि वो बहुत सोचती है तो उसमें डीप थिंकिंग पावर भी डेवलप हो जाती है। तो सेंसिटिव नेचर के ये प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। और जैसे कि इसको हाँ क्या और दूसरा ट्रस्ट, दूसरों पे भरोसा वो नहीं कर सकती, क्योंकि अगर भरोसा उसका किसी ने तोड़ा तो उसको दुख हो जाएगा, तो वो भरोसा करना भी छोड़ देती है लोगों पर। तो ट्रस्ट जैसी कोई चीज ही नहीं होती उसके लाइफ में। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है गिल्ट, पाप, दोष, जैसे कि मैंने कोई बड़ा दोष किया है, उसको ये गिल्ट फीलिंग होगी लाइफ में। कुछ भी होगा ना तो तुरंत वो है ना इस भाव में जाएगी कि मैंने कोई अपराध किया है, मैंने कोई दोष पाप किया है, मैंने अपराध भाव में रहेगी वो कि देखो मैंने किया है। तो जैसे कि जब अपने आप पर ही गुस्सा करना उसको बोलेंगे अपराध भाव। जैसे एक होता है दूसरों पर गुस्सा करना और एक होता है अपने आप पर ही गुस्सा करना, उसको कहते हैं अपराध भाव, क्योंकि वो अपने आप को ही चिल्लाती अंदर से, अपने आप को ही नेगेटिव थॉट्स देती अंदर से, और ये कितना हानिकारक होता है, एक्चुअली कितना डैमेजिंग होता है ये। तो जैसे कि देखो अगर हम किसी और को चिल्लाते हैं तो एक पॉसिबिलिटी है ना कि सामने वाला उठ के चला जाएगा, कब तक सुनेगा हमारी, या सामने वाला हमको रेजिस्टेंस देगा सामने से कि आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है अपराध भाव में कि हम अपने आप को ही चिल्ला रहे, अपने आप को ही दोषी ठहरा रहे, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है अंदर से, तो तुरंत वो फीलिंग अंदर चली जाती है कि मैंने ये चीज गलत की, और तुरंत आत्मा शक्तिहीन हो जाती है या इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चली जाती है। तो ये गिल्ट फीलिंग इसमें बहुत होगी, तो इसको भी हैंडल करना है। तो एंड में हम देखेंगे कि कैसे बाहर निकलना है इन सब चीजों से। तो ये हो गया फीलिंग देवी की शव यात्रा। नेक्स्ट टॉपिक है चिकने घड़े की विजय यात्रा। अब बाबा चिकना घड़ा किसको कहता है? तो जैसे कि जिस पर कोई भी बात ठहरती नहीं, कुछ भी बोलो आप वो अंदर लेगा ही नहीं, ये एकदम ऑपोजिट नेचर है। कुछ भी चित्त पर मन पर वो नहीं रखता, तो ऐसी आत्मा को कहेंगे कि ये चिकना घड़ा है, ये एकदम इनसेंसिटिव पर्सनैलिटी है, या तो कहेंगे थिक स्किन, जाड़ी चमड़ी वाला, कुछ लगता ही नहीं उसको उस ऐसे, या कोई उसकी आलोचना करे, क्रिटिसिज्म करे उसको, तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी क्या क्वालिटीज होंगी? तो जैसे कि अगर किसी ने उसको कुछ बोल दिया तो तुरंत वो उस पर रिएक्ट नहीं करेगा, उसको रिएक्शन ही नहीं है उसका, आई बात ना, ठीक है, एकदम ऐसे झटकने वाला आदमी जो होता है ना, वैसा इसका नेचर होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, उसको आलोचना, क्रिटिसिज्म और इंसल्ट, अपमान, इस दो चीज में उसको डिफरेंस पता होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये जो व्यक्तित्व है ये पॉजिटिव है, तो ये इसको समझ में आता है कि जो मेरा क्रिटिसिज्म कर रहा है, ये जो मेरा क्रिटिक है, तो ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम लेके भी आ सकता है, क्योंकि मैं इस पे इम्प्रूव हो सकता हूँ, क्योंकि मैं इस पे काम कर सकता हूँ। और इंसल्ट को भी वो समझता है कि अपमान जो है वो दुख देने वाला आ रहा है मुझे, लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगा। फीलिंग देवी कैसे स्पंज की तरह है, जो भी मिले ऑब्जॉर्व कर लेती है, और ये जो है ये रिपेल करता है, ये आने नहीं देता अंदर चीजों को, तो ये होगा। फिर दूसरा, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो एक्सेप्ट करता है उसको पॉजिटिवली, उसको तुरंत रिजेक्ट नहीं करता। क्या होता है अगर हमको कोई कुछ बोल देता है तो तुरंत हमारे में ऐसे इमोशंस आते हैं और हम तुरंत रिएक्ट करते, लेकिन इसमें ऐसे इमोशंस ही नहीं आते चिकने घड़े में। हाँ तो वो उसको एक्सेप्ट करता है और सोचता है कि जरूर मेरी निंदा करने वाला जब निंदा कर रहा है तो इससे मैं है ना कुछ ना कुछ अपने में बदलाव ला सकता हूँ, कुछ ना कुछ मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। और ऐसे भी व्यक्ति होते जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जो बोले चलेगा, जैसे एक कान से सुनो दूसरे से निकालो। तो जैसे हमारे पास मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं ना, उसमें वैरायटी के लोग होते हैं, जब उनसे कुछ गलती होती है और हम उनको चिल्लाते हैं या हम उनको कुछ बोलते हैं, तो एक होते हैं जिनको बड़ा बुरा लग जाता है और उनका मुंह ऐसे और शायद आंख से आंसू भी आने लगते हैं उनके, और जो दूसरे होते हैं, जैसे हमारे पास एक था 2 साल पहले, उसको आप आईसीयू में, उसने कुछ गलती की, हमने उसको चिल्लाया, वो सुनेगा सुनेगा ऐसे जैसे कि बस खत्म सब कुछ, और आईसीयू के बाहर निकलने के बाद ऐसा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, एकदम जाड़ी चमड़ी उसके फर, हम सोचते थे ये बदलेगा कि 3 साल में कि ये ऐसे ही रह जाएगा, ऐसा उसका कैरेक्टर था। तो ऐसे भी लोग होते कि वो नहीं लेंगे उसको अंदर। और जैसे कि अगर किसी ने उसको कुछ बोल दिया तो वो सोचेगा कि ये एक आत्मा की ओपिनियन है ना, पूरी दुनिया की तो ओपिनियन नहीं है, तो मैं इस ओपिनियन को एक्सेप्ट क्यों करूं, ये तो सिर्फ एक ही ने बोला है, वो ऐसे सोचेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी ने बोल दिया कि अरे क्या हुआ आज आप मुरली क्लास में आना छोड़ दिए, क्या आपको माया ने खा लिया क्या, किसी ने ऐसे बोल दिया तो कितना बुरा लगेगा, लेकिन इसको बुरा नहीं लगेगा, ये किसी कारण से नहीं जा रहा होगा, है ना। फीलिंग देवी को तुरंत लगेगा ऐसे बोल दिया मुझे, इसको लगेगा चिकने घड़े को ना 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 ये तो है ना एक ही आदमी का ओपिनियन है, इसको क्या पता मेरी परिस्थिति क्या है, तो ये है ना लेगा नहीं अंदर उसको। दूसरा, हर चीज को ब्रॉड माइंडेडली एक्सेप्ट करेगा, मतलब खुले मन से कि, और है ना चीजों को ड्रैग नहीं करेगा, जैसे कि उसकी कोई आदत नहीं होती कि है ना कर्म में अगर कुछ हुआ तो उसको फिर अपने रूम तक लेके जाओ या उस पे सोचो कि ये हुआ आज उसने मुझे, ये सब उसमें नहीं होगा, समय अनुसार सब चीज उसकी है ना सॉल्व होती जाएगी, तो ड्रैग नहीं करेगा कोई चीज को। छठा पॉइंट, इसमें धैर्यता बहुत है, पेशेंस है, इसमें धैर्यचित है ये। जैसे कि अगर उसके कैरेक्टर पे कोई कुछ बोल रहा है, बहुत बोल रहा है, या उसको कोई बहुत मैसेजेस कर रहा है या ईमेल्स कर रहा है और दुख देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें इतना धैर्य है कि ये रिएक्ट नहीं करता, ये तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा, तुरंत मैसेज नहीं करेगा और उसको रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसी में उसकी जीत है। चिकने घड़े की इसीलिए कह रहे हैं कि हर पल पल विजय यात्रा है, और फीलिंग देवी की हर पल पल शव यात्रा है। वो पल पल मर रही है और ये पल पल जीत रहा है। और पॉजिटिव आउटलुक होगा इसका लाइफ के तौर पर। तो जैसे कि अगर किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसको जॉब नहीं मिला, कैसी फीलिंग आएगी ना, नहीं मिला, नेगेटिव थॉट चालू। इसको ऐसा लगेगा ठीक है, बाबा ने मेरे लिए कुछ और बड़ा रखा है इसीलिए नहीं मिला। अगर इसने किसी बड़े को अर्जी डाली किसी चीज के लिए और उसकी अर्जी फाइनल नहीं हुई, तो भी उसको बुरा नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि जरूर कुछ मजबूरी है, जरूर कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरी अर्जी फाइनल नहीं हुई। और फीलिंग देवी को लगेगा ऐसे कैसे नहीं बोल दिया इन्होंने, इन्होंने तो हाँ बोलना चाहिए था, हम तो इतनी छोटी सी चीज मांग रहे हैं, ये तो हमारी नेसेसिटी है। ये सारी फीलिंग्स आएगी फीलिंग देवी में, और उसको हैप्पीली हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगा, खुशी खुशी हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगा। उसमें कंपैरिजन की भावना नहीं है। जैसे फीलिंग देवी है ना, वो कंपेयर कर रही है, हर चीज में कंपेयर कर रही है, इसलिए दुख हो रहा है, और ये कंपेयर नहीं कर रहा है। हर जो भी चीज उसको मिले उसको खुशी से एक्सेप्ट करना। जैसे कि उस दिन एक बहन आई, मैंने बोला आज गुलाब जामुन था ना आपने खाया, बोला हाँ लेकिन मुझे छोटा मिला और मेरी बाजू वाली को बड़ा मिला। तो ये होता है, चिकने घड़े को चलेगा उसको छोटा मिले या बड़ा मिले, लेकिन नहीं वो ऐसा भी नहीं रहेगा। और फीलिंग देवी ऐसे, जैसे अगर सौगात मिलेगी है, सौगात में वो बेडशीट मिलती, इसको ये रंग मिला, मुझे ये रंग मिला, ये बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन यही बातें हैं जो चिकना घड़ा और फीलिंग देवी में कैसे डिफरेंस है, कहाँ पे आप पिकअप कर सकते हो कि ये फीलिंग देवी है। जरूरी नहीं है, वो भी ज्यादातर के स्टैटिस्टिक्स अगर देखा जाए तो बहने फीलिंग देवी में जाती है और भाई चिकने घड़े, बट ऐसे लोग हैं, भाई भी है। जैसे मैंने बोला ना कल जो भाई आया वो तो फीलिंग वाला भाई था, नहीं नहीं, अंदर अंदर डालते वो भाई लोग, एक्चुअली दिखाते नहीं, प्रेशर आता है ना भाई ना, अंदर अंदर रखते और दिखाते नहीं, दिखाते कि हम बड़े स्ट्रांग हैं, ना ही रोते किसी के सामने। हाँ हाँ, बहने पावरफुल और फिर थोड़ा उसका पॉजिटिव आउटलुक कैसे, जैसे अगर कोई क्लास सुन ली, ठीक है, क्लास में किसी ने कुछ बोल दिया कि आपका योग नहीं लगता क्योंकि आपने बहुत पाप किए, और फीलिंग देवी को अगर योग नहीं लगेगा तो वो क्या सोचेगी कि हाँ मैंने बहुत पाप किए इसलिए मेरा योग नहीं लग रहा। फिर किसी ने बोल दिया नींद नहीं आती ना, यानी कि जरूर किसी को बहुत पाप, जरूर किसी को दुख दिया है बहुत, और हाँ किसी की नींद आपने फिटाई तो आज आपको नींद नहीं आ रही। लेकिन ये कैसा होगा, ये सोचेगा कि हर चीज जो क्लास में बोली जा रही है वो मेरे लिए नहीं है। उसको पता है कि क्या पिकअप करना है और क्या नहीं पिकअप करना है। हाँ, और जरूरी नहीं है कि सामने वाला स्पीकर जो बोल रहा है वही सच है, स्पीकर की हर बात हम मेरे लिए नहीं है, स्पीकर की जो बात मुझे लेनी है मैं वो लूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीकर जो बोल रहा है वो सत्य मेरे लिए है, वो किसी और के लिए होगा। अभी अगर किसी को नींद आ रही है योग में तो उसके अलग इतने 10 कारण है, ये एक कारण नहीं है कि पाप कर्म किया, और किसी ने एकदम बड़ा स्टेटमेंट बोल दिया कि पाप कर्म करने से आपका योग नहीं लगता, फीलिंग देवी उसको तुरंत ले लेगी, चकना घड़ा नहीं लेगा उसको। तो ये कुछ दूसरा प्रेजेस, अगर उसको कोई प्रशंसा भी करे तो भी वो नीचे गिर जाता है, जो भी मतलब उसके ऊपर ठहरती नहीं वो, या उसको अंदर नहीं लेता वो, ठीक है वो किसी ने किया तो किया। अब हम सोच रहे थे कि यज्ञ में ऐसे चिकना घड़ा कौन सा है। हमारे सामने से ब्रह्मा बाबा का ही एग्जाम्पल आया और कुछ कुछ ऐसे उदाहरण के तौर पर जैसे बेगरी पार्ट जब चला और बहुत सारे बच्चे बाबा को छोड़कर चले गए, बाबा ने उनको इतनी पालना दी, बाबा को कितनी फीलिंग आनी चाहिए थी कि मैंने इनकी इतनी पालना की और ये लोग मुझे छोड़ के चले गए, लेकिन बाबा को वो फीलिंग नहीं आई। तो जैसे कि धोखा, ये सिचुएशन में धोखा है लेकिन फीलिंग नहीं आई, बाबा ने उसको कितनी स्टेबल तरीके से उसको हैंडल किया। दूसरा, जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा ने किस तरह से योग युक्त रखा सबको, और जब लच्छू दादी ना वो रोते हुए बाबा के पास आए और बोले मम्मा चली गई और रोने लगी, तो बाबा ने बोला तुम रो रही क्यों हो, बाबा की थी, बाबा के पास चली गई। और बाबा ने जैसे कि मम्मा की जो शव को श्रृंगार करना था या पूरी वो यात्रा निकली, तभी भी बच्चों को योग युक्त रखा। और जैसे बाबा बोल रहे थे उनको कि है ना देखो आप लोग योग करोगे ना तो अपनी मम्मा वापस आ सकती है, और बीच बीच में बाबा संदेशियों को ऊपर भेज रहे थे जाओ देख के आओ अभी क्या है, तो संदेशी वतन में जाके देखती थी तो कहती थी कि हाँ बाबा मम्मा से जुड़े हुए धागे दिख रहे हैं, तो बाबा कहते थे और योग लगाओ हम रस्सी डाल के मम्मा को खींच लेंगे नीचे। तो कैसे इतना बड़ा व्यक्ति हमारी जिंदगी से जा रहा है और फिर भी बाबा को दुख की अवस्था नहीं है, ना ही कुछ इफेक्ट हो रहा है कि अब क्या होगा, संभालने वाली माता चली गई, ऐसे विचार आने चाहिए, लेकिन ये कोई विचार नहीं आए ऐसे। हो गया ऐसे ही हापुड़ का भी, जब हापुड़ में भी जब इतना प्रॉब्लम हो रहा था, बहनें इतना फेस कर रही थी, और जब बाबा को जाके पूछा गया तो बाबा ने क्या कहा, ड्रामा अनुसार जो होना है वही हो रहा है, वही रहने दो उनको, है ना। और जैसे विश्व किशोर दादा, उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो तभी भी बाबा कितने स्ट्रांग, और उनको पता था कि ये बच्चा जाने वाला है, फोटो निकाली उनकी, और फिर वो जब चले गए बॉम्बे में, उनको नींद नहीं आ रही थी तो बाबा ने पूरा रात योग किया उनके लिए कि बच्चे को नींद आए। और एक दो दिन बाद जब शरीर छोड़ा और बाबा को कहा कि बॉडी को यहाँ लेके आए, तो बाबा ने कहा नहीं आत्मा चली गई, हमारा तो संबंध आत्मा से था। और वहां के फोटोग्राफ्स भी जब बाबा के पास लेके आए तो बाबा ने वो फोटोग्राफ्स भी नहीं देखे, है ना। तो कितना अचल अडोल और स्थिर रहे बाबा। ऐसे ही बड़ी दादी जी अपने अनुभव में सुनाते, जो एंटी थे ओम मंडली के, निर्मल शांता दादी के जो ससुर थे, वो है ना एक गवर्नर की मीटिंग में बुलाया गया था, और है ना वो खड़े रह के बाबा को इतनी सारी गाली दे रहा था, परंतु बाबा ऐसे खड़े रह के मुस्कुरा रहे थे उसको देख के, और दादी को इतना गुस्सा आ रहा था, दादी को लग रहा था ये वही सीन है जो शिशुपाल और कृष्ण के बीच में था कि वो 100 गालियां दे रहा है और कृष्ण फिर भी ऐसे ही खड़ा है, लेकिन बाबा देखो इतनी गाली मिलने पर भी कैसे रहे, और हम होंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन देखो चिकना घड़ा मतलब नो रिएक्शन। तो ये सिचुएशंस में देखा जाए तो बाबा ऐसे थे। और तो बाबा के महावाक्य क्या है चिकने घड़े के, जैसे वो सुना अनसुना कर देना, या जो हाँ निंदा स्तुति सब में समान, और मान अपमान में समान, और अचल अडोल स्थिर आत्मा रहेगी, ऐसी ये आत्मा सहनशील है, सहन शक्ति है इसमें, ऐसा नहीं कि सहन करते करते फील करना, जैसे बाबा का स्लोगन था ना उस दिन कि सहन करना झुक जाना ही महानता है, इसमें कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे बाबा के अलग अलग महावाक्य है इस पर भी। और अब कि इस फीलिंग देवी से चिकना घड़ा कैसे बनना है, तो सबसे पहली पॉइंट हमने देखी कि हम अपने आप की स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। अगर ये दोनों की स्थिति में ही फर्क है ना, ये इतनी कमजोर है और ये इतना ऊपर है, तो ये स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको पता होनी चाहिए कि हमारे अंदर का रोना कब चालू होता है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि माँ अपने बच्चे को झूले में रखती है और उसको खिलाती पिलाती है, फिर अपना काम करने लग जाती है, लेकिन जब बच्चा रोता है तो माँ क्या करती है, तुरंत बच्चे के पास जाती है झूले में, तुरंत उसको खिलाती है, झूला झुलाती है, और फिर अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही जब हमारे अंदर से कोई रिएक्शन आ रहा है या हम रो रहे हैं अंदर से, हम अपने आप को ही कोस रहे अंदर से, तो तुरंत अपने आप को संभालना है, तुरंत 2 मिनट अपने आप को देना है, समझाना है सिचुएशन के बारे में, और फिर आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली बात कि अटेंशन पूरा और अपनी स्थिति की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी पॉइंट, जैसे कि हम अमृत वेला करते हैं ना, तो अमृत वेला जब करते हैं तो आत्मा शक्तियों से भर जाती है, पूरी तरह से शांति है उसमें, शक्ति है उसमें, एक अलग तरह का कंटेंटमेंट है उसमें। और अब पूरे दिन भर हमको ध्यान रखना है कि ये कम ना हो। अगर ये कम होता है तो तुरंत रुक कर उसको चेक करना है। देखो जैसे बाबा ने कल की मुरली, संडे की मुरली में एक वाक्य है कि मन जहाँ जाता है तो देखो मन कहीं कहाँ जा रहा है, जहाँ जा रहा है वो श्रेष्ठ चीज है क्या, या इससे भी कोई श्रेष्ठ चीज है, अच्छी और श्रेष्ठ है या इससे भी कोई श्रेष्ठ चीज, या बाप से भी कोई श्रेष्ठ चीज है, ये सोचो। और संकल्प और कर्म करने से पहले सोचो, ऐसे नहीं कि करने के बाद सोचो। तो जर्मनी ग्रुप, कर्म करने से पहले, कर्म करने के बाद नहीं, तो पहले चेकिंग और फिर प्रैक्टिकल। तो उसी तरह से दिन भर ये पॉइंट को याद रखना है। तीसरी पॉइंट, जैसे हमने अपराध भाव के बारे में बात की, गिल्ट, तो अभी इस गिल्ट को खत्म करने के लिए जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ये गिल्ट आता कहाँ से है। तो जो बच्चा होता है ना, तो उसकी जो पेरेंटिंग होती है, जैसे उसके पेरेंट्स होते हैं या उसके गुरु टीचर्स होते हैं या घर में जो रिलीजियस टीचिंग्स दी जाती है, उस पर बच्चा कुछ सुनता है ना तो उसको सेंसिटिविटी से अपना लेता है और आगे जाके उसके लाइफ में ये उसको गिल्ट फीलिंग या अपराध भाव डेवलप होता है उसके लाइफ में। जैसे कि अगर कोई लड़का और लड़की है, बच्चे है, अगर माता पिता को लड़का चाहिए था लेकिन लड़की हो गई, उसके बाद लड़का हुआ, अगर ये दो बच्चे घर में एक साथ है, और तो लड़की जो रहेगी ना वो क्या करेगी, वो हर चीज में संभाल संभाल के करना चालू करेगी कि अगर मैंने कुछ गलती की तो माता पिता का प्यार मुझे नहीं मिलेगा। तो वो इस भाव से पूरा टाइम अपना बचपन बिताती है, इतनी सेंसिटिविटी डेवलप होती है कि फिर बाद में गिल्ट आता है। तो जब गिल्ट आता है तो हम अपने आप को चिल्लाते हैं। देखो जब किसी और से गलती होती है तो हम क्या करते हैं उसको, ठीक है ना हो गया, हम दूसरे को जब कैसे समझाते, ओके चलेगा हो गया आगे से नहीं करेंगे, वैसे ही हमको अपने आप को समझाना पड़ेगा। अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हमको वो भाव में नहीं जाना है, लेकिन अपने आप को समझाना है कि कोई बात नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छी नहीं हूँ। फीलिंग देवी को क्या लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड, उसको ऐसा लगता है। तो उसको अपने आप को समझाना पड़ेगा या उसको दुनिया का उदाहरण लेना पड़ेगा कि देखो दुनिया में सबसे गलती होती है, ये मैं ही एक नहीं हूँ जो गलती कर रही हूँ। तो ये भाव से उसको अपने आप को समझाना पड़ेगा। जैसे न्यूटन जो था, उसके टीचर ने, मैथ्स टीचर ने उसको बोला कि तुमको मैथ्स कभी आएगा ही नहीं, तुम हमेशा फेल होंगे मैथ्स में, तुम कभी मैथ्स नहीं कर पाओगे। तो वो घर पे जाता है और अपनी माँ को कहता है कि माँ आज मैथ्स टीचर ने बोला कि तुम मैथ्स कभी नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा फेल होंगे। तो माँ कहती है हाँ बराबर है बेटा, टीचर जो बोलती है वो तो राइट ही बोलती है, तो लेकिन तुम कन्वेंशनल मैथ्स कभी नहीं कर पाओगे, परंतु तुम नए मैथ्स के जो नियम होते हैं वो नियम को तुम निर्माण करोगे। तो जब उसकी माँ ने ये पॉजिटिव थॉट उसमें डाल दी तो उसके लाइफ में इतनी क्रिएटिविटी आई कि कितने लॉज उसने डिस्कवर किए। तो इस तरह से किस तरह से अपने आप को वो पॉजिटिव थॉट देना है। और जैसे कि हैबिट हो गई ना फीलिंग देवी की, गिल्ट में जाना या रोने की आदत, तो इसको हैबिट को ब्रेक करने के लिए न्यू हैबिट्स बनानी पड़ेगी हमें। तो न्यू हैबिट्स के लिए जैसे बहुत बार चर्चा हुई है कि 21 दिन लगते हैं या 7 दिन लगते हैं, तो कोई भी चीज बार 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 करने पर वो हैबिट बन जाती। तो हैबिट्स, हमको नई हैबिट्स डालनी पड़ेगी। दूसरा, ज्यादा सोचने की आदत, जिसको ज्यादा सोचने की आदत होती है ना तो उसका सिर भी भारी होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स पे हमको फुल स्टॉप लगाने आना चाहिए। तो जैसे ना एक आर्टिकल आया था न्यूरॉन्स रीवायरिंग, तो उसमें था कि कंप्लेंट्स, किसी किसी की नेचर होती है कंप्लेन करने की, तो जब हम बार बार कंप्लेन करते हैं ना तो हमारे न्यूरॉन्स रीवायर हो जाते और नेक्स्ट टाइम भी हमारा रिएक्शन ऐसे ही होता है कि हमारी कंप्लेनिंग नेचर होती है। तो उसमें बताया गया कि इसको फुल स्टॉप कैसे लगाया जाए कि जब हम कोई कंप्लेन लेकर जाते हैं या जब हमारे मन में कोई कंप्लेन आती तो तुरंत उसको सोल्यूशन उसका डिसाइड करना है। जैसे कि अगर कोई जाए और बोले कि हमारा टेलीफोन नहीं चल रहा है, हमको नया टेलीफोन इंडेंट करके दे दो, तो अभी नहीं दे रहे, अभी वो नहीं दे रहे, तो है ना फिर है ना हमको कुछ सोल्यूशन के साथ जाना पड़ेगा कि आप लिख दो इस पर, अगर आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा। सिर्फ कंप्लेनिंग नेचर लेके नहीं जानी है परंतु साथ में सोल्यूशन, नहीं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स रीवायर हो जाते और बार बार फिर हम वही नेचर आती हमारी वही आती। दूसरा लेट गो करना हर चीज को। फीलिंग देवी चीजों को पकड़ के रखती है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा लेट गो। जैसे कैड प्रोग्राम में भी बताते हैं कि जो लोग चीजों को पकड़ के रखते हैं उनके ही हार्ट में ब्लॉकेजेस होते हैं। तो उसी तरह से हर चीज को लेट गो करना और हर चीज को पॉजिटिविटी से देखना। पॉजिटिविटी से देखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और कहीं ना कहीं एक क्षमा भाव भी होना चाहिए हम में। जैसे उस दिन था ना वरदान में कि रहम की दृष्टि से घृणा के भाव को समाप्त कर दो, तो वैसे करना पड़ेगा। बाकी बाबा के एक कल वीडियो आया था, उसमें दोनों दादी चिटचैट कर रहे हैं और दादी जानकी दादी गुलजार को पूछते हैं कि है ना हम संगठन में रहते, परिवार में सबके संस्कार दिखने में आते, क्या करने का। तो दादी ने कहा हाँ सबके दिखने को आते। तो बाबा ने एक मुरली, दादी कह रहे बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बच्चों को नोट करने की बहुत आदत होती है, हर चीज नोट करते, इसने ये किया उसने वो किया। तो नोट के बदले अपने जेब में सहयोग के नोट्स रखो, तो जब सहयोग के नोट्स रखेंगे तो सहयोग देंगे। तो वो भी एक पॉइंट था। तो ये कुछ चीजें थी, इसके अलावा भी और चीजें हो सकती है कि कैसे हम फीलिंग देवी से चिकना घड़ा बने। अभी हमने रात की क्लास में कल पूछा कि तो क्या बनना है, फीलिंग देवी बनना है या चिकना घड़ा बनना है। तो एक भाई ने बोला दोनों बनना है क्योंकि 16 कला संपूर्ण बनना है। तो हमने कहा अच्छा, बोले हाँ क्योंकि है ना जो आप बोल रहे हो ना ये डिप्लोमेसी है, मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी होनी चाहिए हमारी, हमको पता होना चाहिए किसके साथ फीलिंग देवी बनना है किसके साथ चिकना घड़ा, क्योंकि दोनों जो पहलू है देखो, एक सेंसिटिव नेचर है एक बहुत इनसेंसिटिव नेचर है। हम ऐसे भी अपना नेचर नहीं रख सकते चिकने घड़े की तरह कि कोई भी आए और हम उसको झटक दे। जैसे हमारे प्रोफेशन में अगर हम लेंगे, अगर हम इनसेंसिटिव हो जाए पेशेंट की सफरिंग से, ऐसे भी नहीं हम बोल रहे कि सिंपैथी होनी चाहिए हम रोए उनके साथ, लेकिन एम्पैथी होनी ही चाहिए तभी हम सामने वाले को हेल्प कर पाते। तो वहां मुझे फीलिंग देवी वाला या सेंसिटिव नेचर रखना पड़ेगा पेशेंट्स के साथ। अगर कोई एडवोकेट है, अगर कोई लॉयर है, जज है, तो उसको है ना चिकना घड़ा बनना पड़ेगा वहां पे डिसीजन लेने के लिए, है ना। वो ये नहीं सोच सकते। अगर कोई पुलिस के प्रोफेशन में है तो उसको वहां चिकना घड़ा बनना पड़ेगा, वहां फीलिंग देवी बन के नहीं रह सकते। तो 16 कला संपूर्ण। ओम शांति।